روایتوں کے ساتھ چلیں گے. سورت ملک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ ہر رات سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھتے تھے, بلکہ سوتے ہی نہیں تھے اس کے بغیر. فرمایا کہ قرآن میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا, اور وہ ہے سورت تبارک الذی بیدہ الملک. اس سورت کا ایک اور نام سورت تبارک بھی ہے, اور حقیقت ہے کہ وہ واقعی تبارک ہے. یہ ترمذی کی روایت تھی 2891 کی, اور اسی طرح اس سورت کے بارے میں چند روایات جو بہت سٹرونگ درجے کی نہ بھی ہوں لیکن موجود ہیں کہ یہ مانیت من عذاب القبر, قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے. ٹاپک لکھیے گا, پہلی 14 1-14 14 آیتوں کا ٹاپک ہے, کمرہ امتحان میں ہو, فن پلیکس میں نہیں. پھر اس کی وضاحت لکھ لیجئے, جسے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی معلوم نہیں, آخر وہ آخرت کی تیاری کیا کرے گا. چلیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے, جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے. نوٹ کیجئے گا, موت کا لفظ پہلے ہے کیونکہ ہم سب پہلے مردہ تھے. کن تم اموات انفا حیاتکم, کیا پتہ چلا کہ پہلے موت پھر زندگی پھر موت ہے اس کے بعد. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے, اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے. جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے, اور تو ایسے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا. نوٹ کیجئے, انصار اللہ کے لیے نکات ہیں, کہیں بے ترتیبی نہیں ہونی چاہیے, نہ آپ کے حال حلیے میں, نہ آپ کے یونیفارم میں, نہ آپ کے بیٹھنے میں, نہ آپ کے ریسپشن پہ, اور نہ آپ کے اسکول میں, اور نہ آپ کے بتانے کے دوران کو بے ترتیبی ہونی چاہیے. ہر چیز کو کائنات سے جوڑیے. کتنا خوبصورت ہے یہ جہان. ہم ہوتے تو ایک تھیلے میں ڈال کر سبزیاں پکڑا دیتے, لو کھا لو. کیسے خوبصورت ڈنڈیوں کے ساتھ سجائیں پھل سجایا, تو اللہ کہتا ہے میری اس کائنات میں تمہیں کہاں بے ترتیبی دکھتی ہے؟ تو تم اپنے ذرا دین کی جگہوں کو تو جا کے آج دیکھو, ذرا کونوں کھدروں کو تو کھول کے دیکھو, ذرا اپنی الماریوں کو بھی دیکھو, کبھی تم مسجدوں کے واش روم تو دیکھ لو. ناک بند کر کے کوئی گزر جائے تو گزر جائے. تم کس دین کی دعوت دیتے ہو؟ تو نوٹ کیجئے, اور آپ کی اپنی ذات, اگر آپ انصار اللہ بننا چاہتے ہیں, پاؤں سے لے کے سر کے بالوں تک اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. میں نہیں کہتی آپ اسٹیچو بنیں, میں نہیں کہتی آپ تکلف کریں, آرٹیفیشیل بنیں, میک اپ کریں, لیکن صاف ستھرے رہیں, مہذب ہوں. آپ کو دیکھ کر, آپ کے اسکارف کو, آپ کے ابائے کو دیکھ کر کوئی کہ واہ, ایسے لگتا ہے جیسے ایک سانچے میں نکلے ہوئے ہیں, پاس سے پسینے کی بو نہ آئے, آپ کے اوپر کھانے کے دبے نہ پڑے ہوں. یاد رکھیے, اللہ نے تو مجھے کائنات میں کہیں بھی کوئی جھول نہیں دکھایا, تو فرمایا کہ اس کی پیدائش میں کہاں جھول ہے. دوبارہ نظر ڈال کر دیکھ لو, کیا کوئی شگاف نظر آ رہا ہے آسمان پہ کوئی شگاف؟ پھر دوہرا کر دوبارہ نظر ڈال لو, تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی. آپ کو پتہ یہ جملہ علماء کرام نے کس کے لیے دیا؟ صحیح بخاری کے لیے. ان کو امام بخاری کو کریڈٹ دینا تھا کہ ان کی کتاب میں کوئی جھول ہی نہیں ہے, ایک حدیث بھی تو ضعیف نہیں ہے, بلکہ انہوں نے جو جمع کی تھی وہ ساری چھوڑے وہ پہ تو ایک اور کتاب بن گئی. تو جب انہوں نے کہا دیکھو, پھر دیکھو, پھر دیکھو, ہے کوئی امام بخاری کی کتاب میں کوئی ایسا جھول؟ اور جب سب کچھ کر چکے تو ایک اسکالر تھے, انہوں نے کہا ہم تو یہی کہیں گے, کیا ما ترا فی خلق رحمان من تفاوت, فرج البصر هل ترا من فطور ثم مرج البصر کرتین. بار بار صحیح بخاری کو چھان پھٹک کے دیکھ لو, تمہیں اس کے اندر کوئی جھول نہیں دکھے گا. سبحان اللہ, اللہ ہم سے دین کے کام اس درجے کے کرا لے. بشری کمیاں تو بہت ساری رہیں گی, لیکن کوشش تو کیجیے, معیار تو اچھا رکھیں. یقین کریں اگر میرے بس میں ہو, سب سے خوبصورت بلڈنگز, سب سے زیادہ کمفرٹیبل ماحول, ایٹماسفیئر کنٹرول, نوائز پروف, ڈسٹ پروف جگہیں دین کی جگہ ہوں, لوگوں کا سر خوشی سے اونچا ہو جائے کہ یہ دین کتنا پیارا ہوگا جہاں جانے والی جگہ ایسی ہیں, اور ٹوٹی جوتیاں اور پھوٹی کرسیاں، 6 فریج ایک مسجد میں میں نے خود دیکھے اور سارے خراب. ہوتا کہ شہر میں جس کا فریج خراب ہوتا ہے اور 4 دفعہ ٹھیک کرا لے ٹھیک نہیں ہوتا، جاؤ جی یہ مسجد والوں کو دے آؤ، بیچ کے مرونڈا کھا لینا، اس کا کباڑیے کو دے دینا. یہ ظلم کیا ہم نے اپنے. یقین کرے مجھے جتنا غصہ دین کے تقابل پہ دنیا لیتا دیکھ کر ہوتا ہے، شاید زندگی میں کبھی کسی پہ اتنا غصہ نہ آئے. تم نے یہ سمجھا دین کو؟ یہ تمہارے بچے کھچے کی چیز ہے. وقت فالتو تھا تو دین کو دینے آ گئے ہو، اب تمہیں دنیا نے بلا لیا تو اب چھٹی بغیر بتائے. جائے کام بھاڑ میں، کی تھی کمٹمنٹ، کی ہوگی، کوئی پیسے تو نہیں لیتے نا، گورنمنٹ کے پیپروں پہ تو سائن نہیں کیے تھے نا. ہم نے کیا کہا؟ منہ سے کہا تو منہ سے تو کلمہ کہتے ہو، لا الہ الا اللہ. تو اگر انصار اللہ بننا ہے تو دل پہ پتھر کی لکیر بنا لیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز شیئر کروں. دیکھیں نور القرآن کو اللہ کے حکم سے بنے ہوئے آج 2019 ہے، مت اگر میں اس کو سیدھا راؤنڈ فگر کروں تو 2000 سے کہہ لیجئے کہ اس پلیٹ فارم پہ کام ہو رہا ہے آج تک، اور انشاءاللہ میرے بعد بھی یہ کام کبھی نہیں ہوگا. ہم نے کبھی کسی سے زبردستی کو پیپر فل اپ نہیں کرایا کہ پہلے آپ یہ فارم فل کریں تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ ہیں. کسی قسم کا کوئی افیلیشن پیپر نہیں ہمارے پاس. ہاں جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں پھر ایک والنٹیئر فارم، جس کی نہ کوئی شرعی حیثیت، نہ گورنمنٹ کے لیول پہ، نہ پیپرز پہ، نہ وہ کوئی پلیج ہے، نہ وہ بیعت ہے، نہ وہ حلف نامہ، کچھ نہیں ہے، صرف ایک کمٹمنٹ ہے جو آپ کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کیا ہو رہا ہے. اس کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ جن لوگوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی آج وہ سارے موجود ہیں، ایک آدھ کے سوا. اور وہ ایک آدھ جو گئے تھے الحمدللہ آج وہ بھی اپنے ہیں. آپس کی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں انصار اللہ میں، ایک کام پہ دو کو لگا دیجئے انسان کا نفس آ جاتا ہے. الحمدللہ اس وقت کتنے لوگ ہوں گے میں نہیں کہہ سکتی، نہ مجھے ضرورت ہے، بغیر کسی پیپر کے کمٹمنٹ کے وہ آپ کے اس کام میں لگے ہوئے. اس وقت یہ دورہ قرآن جو آپ کے ساتھ جا رہا ہے، آپ کو اندازہ تو ہوتا ہی ہوگا نا، جو لوگ باہر سے سن رہے ہیں گھروں میں، ادھر ہی دیکھ لیجئے، اتنے بڑے ہال اور اتنے مجمع کو جمع کرنا خلج ہی کا بڑا ہے. انہی ہال میں 400-500 عورتیں آ جاتی ہیں صرف شادی میں، تو آپ دیکھیے کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی، یہ کیسے چل رہا ہے سارا؟ آپ کو تھا کہ پیچھے کمرے میں کتنے بچے ہوتے ہیں، یہ اے سی سارا وقت جو سیٹ کرتے کراتے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کس نے باندھا ان کو؟ یہ کس نے ان کو انصار اللہ بنایا؟ ان کے دل نے بنایا. ہر بندہ اپنی ذات سے یاد رکھیے لالچی ہے. میں بھی بڑی لالچی ہوں کہ مجھے اپنی نیکی چاہیے، میرا فائدہ اس میں، میں اپنے لیے آتی ہوں، میں یہاں آ کے بیٹھ گئی، اس میں میرا فائدہ ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا میں آپ کا کر رہی ہوں، تو لکھ لیجئے، صرف وہ بندہ انصار اللہ بنے گا اور شکووں گلوں کے باوجود کام کرے گا. وہ کہے گا چپ کر کے بیٹھی رہے، کام مل گیا اب نخرے نہ کر. اور دوسرا پاؤں پٹکے گا، ٹپ ٹپ ٹپ، میں جا رہی ہوں، یہ آج میرا آخری دن ہے، یہ آخری دفعہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں، یہ آخری دفعہ نیچے اتر رہی ہوں، اور چلو سب کو لے کر چلوں گی، اکیلی نہیں جاؤں گی، 4-7 لے کے جاؤں گی. بلیو می، ایسے ایٹیچیوڈ دکھانے والے اور اس طرح کے، کیا میں کہوں اس سے زیادہ، ایسے لوگوں کو تو بس اللہ تعالیٰ ڈھانپ کے رکھے. توبہ کیجئے، کبھی بڑا بول نہ بولیں. میں وہاں سے ادھر آؤں پاؤں پٹکوں، کیا مصیبت ہے، آپ نے کیا کیا ہے، کچھ تیار ہی نہیں کیا، مائک نہیں چل رہا، وہ نہیں چل رہا. بھائی نہیں چل رہا تو نہ چلے. تقریباً آدھا پونا گھنٹہ دیکھیے میرے اپنے سامنے آج ہمارا نیٹ نہیں چلا، تو کیا میں آپ کو اس کی وجہ کراؤں؟ آپ میں سے تو کوئی اس کی وجہ نہیں ہے، یہ میرا کوئی گناہ اللہ نے میرے سامنے رکھا. ہمیشہ استفتح قلبک ولو افتوک. حضرت داؤد کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ یہ میرا کوئی معاملہ ہے جو دمبیوں کی صورت میں دکھایا جا رہا ہے. تو انصار اللہ کو اپنے لیے ایک گول دینا ہے آج میں نے، اور وہ کیا؟ ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کریں، یہ کیوں ہوا، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رنکل فری، یہ جو بات پڑھ رہے ہیں نا قرآن میں، کوئی شگاف نہیں، تو میرے ذہن میں اس آیت کو پڑھ کے رنکل فری بیڈ شیٹ آ جاتی ہے. کچھ لوگ بیڈ شیٹ بچھاتے ہیں اللہ کی پناہ، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچھی ہے یا بکھری ہے، اور کچھ ایسے بچھاتے ہیں کہ جیسے فرش بنتا ہے. اللہ کی اس کائنات میں آپ دیکھ لیجئے، جائیے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، میں نے تو اوپر بھی جا کے بہت ڈھونڈا ہے. جہاز کی کھڑکی میں سے میں باہر ڈسٹ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بادلوں میں کہیں ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، کہیں وہاں کوئی بے ترتیبہ پن پڑا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک نہیں، بار بار جا کر دیکھ لو. فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر. इलैकल बसरु खासियं व हुवा हसीर, तुम थक जाओगे ढूंढ ढूंढ के, ढूंढ ढूंढ के तुम जाके कायनात में झोल ढूंढो, तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। देखिए ना, ये छत कितने साल पहले बनी, मेरा ले 5-6 साल पहले ये हॉल बना होगा। आज से 10 साल बाद ये हॉल कैसा होगा अगर इसकी रेनोवेशन ना ये करें, 15 साल बाद कैसा होगा? और जाकर अपनी नानियों दादियों के घर देखिए जिनकी छतें भी टपक रही हैं। ये आसमान कितना पुराना है, एवर न्यू। एक जुमला लिख लीजिए यहाँ, आसमान कितना पुराना है इसके बावजूद लुक्स न्यू। ऐसे ही है ना, जिस रब की कायनात आज तक पुरानी नहीं हुई, उस रब की किताब भी आज तक पुरानी नहीं हुई। जिस तरह उसकी कायनात हर दौर के तकाजों में अप टू डेट है, इस तरह उसका ये कॉल, उसका ये फरमान, उसकी दीवी शरीयत भी अपडेटेड है। मत कहिए कि चेंज करो आज कुरान को और इस्लाम को। फरमाया, फिर दोहरा कर दोबारा देख ले, तेरी निगाह तेरी तरफ जलील व आजिज़ होकर थकी हुई लौट आएगी। बेशक हमने आसमान दुनिया को चिरागों और सितारों से आरास्ता किया और इन्हें शैतान के मारने का ज़रिया बना दिया, और शैतानों के लिए हमने दोज़ख यानी जलाने वाला अज़ाब तैयार कर दिया। अल्लाहुम्म ला तज़अलना मिन्हुम। और अपने रब के साथ कुफर करने वालों के लिए जहन्नुम का अजाब है, और वो क्या ही बुरी जगह है। जब ये इसमें डाले जाएंगे तो इसकी बड़े ज़ोर की आवाज़ सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी, करीब है कि अभी गुस्से के मारे फट जाए। जब कभी इसमें कोई गिरोह डाला जाएगा, इससे जहन्नुम के दरोगे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास डराने वाला कोई नहीं आया था? ज़रा सा इस पर सोचिए और चुटकी काटें और कि अल्हम्दुलिल्लाह भी ज़िंदा है। अभी ये डराने वाला नज़ीर यानी ये कुरान हमारे पास है, मुंजिर की सूरत में प्रीचर्स मौजूद हैं, उस्ताद मौजूद हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने आज ही ये जुमला खोल दिया। देखिए, जहन्नुम में जाकर जिस जुमले पे अफसोस होगा ना, आज दुनिया में अगर किसी के कान में पड़ जाए तो खुश नहीं होने की ज़रूरत कि बच गए, इंशाल्लाह यहाँ तैयारी करके जाएंगे, वहाँ जाके नहीं। ये तो ऐसे ही जैसे कमरे इम्तहान में किसी को एग्ज़ामिनर डांटे कि अकल नहीं है, स्कूल नहीं जाते थे, टीचर ने पढ़ाया नहीं तुझे, तेरे माँ बाप ने तुझे स्कूल नहीं भेजा। अब एक बच्चा जो सारा साल पेरेंट्स सपोर्ट करें, स्कूल कॉलेजेस वाले पूरी कोशिश करें पढ़ाने की, और वो ना पढ़े और कमरा इम्तिहान में आके के क्या करूँ, कुछ बता दो ना, तो कहा नहीं बताओ, कोई नहीं आया था। वो जवाब देंगे कि बेशक आया था लेकिन हमने इसे झुठलाया। इस पर मेरा दिल करता है मैं रोऊं। हज़ारों फ्लायर छपते हैं, उसमें शायद फ्लायर दे के चंद 100 लोग आते होंगे, ये मेरा ईमान है। हज़ारों मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, लाखों लोगों तक फेसबुक से फ्लायर्स टच करते हैं, यूट्यूब पे 10 लाख कह लीजिए, चलिए ये भी उसकी बहन भाई हो गए दोनों, कितने आते हैं। कितना आसान हो गया आज दीन का पैगाम देना, आप देख लीजिए। उसके बावजूद आज आम तौर पे, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आम तौर पे बात करती हूँ, लोगों के पास टाइम ही कोई नहीं, वक्त ही कोई नहीं, मसरूफ़ है। मैं एक मिसाल दूं कि अगर मैं आपको ईद वाले दिन इधर बुलाऊं सिर्फ 2 घंटे के लिए, कितने लोग आएंगे? मैं आपको सच कहूं कि आप नहीं आएंगे। और अगर अंसारुल्लाह टीम के लोग आ भी गए तो घर वाले कहेंगे इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है, तसव्वुर ही नहीं है। और ईद से एक दिन पहले बुला लूँ, अल्लाह की पनाह, इतने मोटे मोटे आंसू निकलेंगे हमारे। हाय, ईद से एक दिन पहले भी बुला लिया, सारा महीना बुलाते रहे, कितना बुलाते हैं आपको? 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, मान लीजिए 3 ही घंटे हैं, 21 घंटे आपके हैं। तो याद रखिएगा, इंसान को अल्लाह ने बनाया है। मुझे तो ये पढ़ाते वैसे लग रहा है कि मेरे अंदर से धक 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 की आवाज़ें आ रही हैं। अल्लाह कहता है तुझे मैं जानता हूँ, तुझे मैंने ही तो बनाया। आगे आयत आ भी रही है, फिर सुनिए उनकी एक और बात कि जब ये सारी बातें हो जाएंगी और उनको समझ आ जाएगी कि हमने गलती की, अब आगे इसको हाईलाइट कीजिएगा और वाकई हाईलाइट करने की ज़रूरत है। आयत 10, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी असहाबि सईर। और वो कहेंगे काश हम सुनते होते या अक़ल रखते होते तो दोस्तियों में शरीक ना होते। या एक जुमला तो लिखिए, ये क्यों नहीं कहा काश हम पढ़ते होते? पढ़ने का जिक्र नहीं है, सुनने का और अक़ल का। तो लिखिए, कुरान का मिजाज सुनने का है, पढ़ने का नहीं है। सवाब के लिए करना है तो पढ़िए, और हिदायत के लिए पढ़ना है तो सुनना पड़ेगा। पीछे भी 21वें पारे के पहली आयत में बात कर चुकी, उत्लुमा उहिया, ये कुरान सुन के समझ आता है। लोगों से कहना पड़े, कहते मेरे घर में किताबें हैं, तफसीर इब्ने कसीर भी है, तफसीर फलां भी है, पढ़ रहे हैं, पढ़ी हैं? नहीं पढ़ी, कोई नहीं, कई दफ़ा शुरू की हैं, थोड़ी सी पढ़ती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, बोर होती हूँ। कई लोग कहते हैं कोर्सेज़ करने के बाद कि वही तफसीरें जो 10-10 साल से घर में पढ़ी थी अब उनको पढ़ें तो मज़ा आता है, क्योंकि एक दफ़ा सुन लिया है। तो कुरान का मिजाज सुनने का है, और शैतान जो सुनने से ही रोक लेता है। अल्लाह ताला माफ़ कर दे सबको। फ़तरफ़ु बिज़म्बिहिम फ़सुख़्क़ल्ली अस्हाबे सईर, और कहेंगे अगर हम सुनते होते या अक़ल रखते तो दोस्तियों में शरीक ना होते, बस उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया, यानी इकबाल जुर्म कर लिया, कन्फेस कर लिया, अब ये दोस्ती दूर हों। इसके बरक्स कुछ लोग, अल्लाह हमें इनमें कर दे, इन्नल्लज़ीन यख्शौन रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर, बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से ग़ायबाना तौर पर डरते रहते हैं बिन देखे, इनके लिए बख्शिश है और वो बड़ा सवाब है। अल्लाह में अपना खौफ दे दें। और वासिरु क़ौलकुम वजहरू बिहिन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तुम अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर करो, वो तो सीनों की पोशीदगी को भी बखूबी जानता है, क्या वही ना जाने जिसने पैदा किया। लिखिए, इसको हाईलाइट कर ले, माँ का प्यार जहन में लाइए। बच्चा माँ से कुछ छुपाता है, परेशान है, माँ को इसलिए नहीं बताना चाहती बेटी कि माँ परेशान होगी, और अच्छी बेटियाँ ऐसे ही होती हैं, माँ को बताती नहीं है, उनसे छुपाती हैं। खैर, माँ एक दिन भांप लेती है, कहती इधर आओ, क्या बात है, क्या छुपा रही है मुझसे? आप कहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो फिर माँ गले से लगाती है तो एकदम आपके आंसू निकलते हैं, फूट फूट के आप रोते हैं। फिर माँ कहती है, मैं नहीं तुझे जानूंगी जिसने पैदा किया। कितनी देर माँ ने रखा पेट में? 9 माह। और कोई जल्दी में 7 माह में ही आ जाए तो फिर उसकी मर्ज़ी, कुछ को तो इतना शौक़ होता है दुनिया में आने का, वो भाग के बाहर आ जाते हैं, शौक है ना बंदे को। चलिए 7 से 9 माह दूध पिला दिया, 2 साल, वो माँ आपके दिल को जान गई या आपके चेहरे के तासरात को पहचान गई, वो ना जानेगा जिसने आपको तब भी जानता था जब आप नहीं थे। याद रखिए, अपने आप को अल्लाह के सामने पेश कर दें, शीशे का बना लें। अला यालमु मन खलक, क्या वही ना जाने जिसने पैदा किया, और फिर वो बारीक बीन और बाखबर भी हो। चलिए, कुछ माएँ भोली होती हैं, उनको नहीं पता चलता बच्चों के दिल पे क्या गुजर रहा है, क्या हो रहा है, अल्लाह तो बारीक बीन है, खबरदार है। तो क्या सीखा आपने? मैंने पहली बार देखे, तबारक अल्लज़ी बियदिही अल्मुल्क, हम सब एक कमरा इम्तिहान में हैं, अल्लाह सुबहान ताला ने आपके मेरे सामने पहले जो बात रखी है वो क्या है कि मैं बाबरकत हूँ, मेरे हाथ में बादशाही है और वो हर चीज़ पे कादिर है, उसने पैदा किया मौत। पहले मौत का लफ्ज़ क्यों है? तो याद रखिए कि रूह एक गैर मरई चीज़ है, यानी उसको देख नहीं सकते, जिस बदन से इसका ताल्लुक़ और इत्तेसाल हो जाए वो ज़िंदा कहलाता है, जिस बदन से इसका ताल्लुक़ टूट जाए वो मौत से हमकिनार हो जाता है। लिखिए, मौत क्या है? मौत भी ज़िंदगी की एक स्टेज है, पहले मुर्दा थे फिर ज़िंदा हुए, कहते ना कि ज़रा दम ले के फिर चल पड़ेंगे। मौत ज़िंदगी का एक दूसरा रुख है, दो मौतों के बीच में थोड़े दिन की ज़िंदगी मिली थी, फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये दुनिया आर्जी है, इसके बाद मौत है, इसलिए कायम किया ताकि हम आज़माए जाएँ। अब आजमाया जाना क्या है इसको समझ लीजिएगा, लिया ब्लूवाकुम, आजमाइश। हम सब इस दुनिया में एक कमरे इम्तिहान में हैं, जिसको ज़िंदगी का मकसद नहीं पता, जिसको इस दुनिया में आने का मकसद नहीं पता, वो कैसे वो काम करेगा जिसके लिए उसको बुलाया गया। मतलब देखिए, आप सब यहाँ आए, हो सकता है कोई एक सिस्टर बाहर से आपको आता देकर वो भी आ गई, उनको कुछ भी नहीं पता कि इधर क्या हो रहा है, उनको बिल्कुल इसका अंदाज़ा ही नहीं है कि यहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, यहाँ शादी है, यहाँ कोई पार्टी है, फंक्शन है। बताइए, वो यहाँ आकर कुरान सुनेंगी? वो तो परेशान होंगी, पहले ताड़ेंगी, इतने लोग क्यों हैं, खैर तो है, ये तो है, वो तो है। तो सबसे बड़ी चीज़ जिसको आज मैंने आपने अपने लिए लेना है, मैं इस दुनिया में क्यों आई, आप देखिए कि आप कहीं भी जाते हैं ना, तो घर वाले पूछते भी हैं और जान भी लेते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं। मसलन 25 के इम्तिहान हो रहे हैं, सुबह उठकर पेपर की तैयारी के बाद जाने के लिए तैयार हो रही है। जब इम्तिहान देने के लिए कोई तैयार हो रहा होता है उसमें और शाम को किसी शादी में जाने की तैयारियों में फ़र्क होता है? फ़र्क होता है? पेपर की तैयारी है और जाना है केमिस्ट्री का पेपर देने, और आके पूछती है, मामा क्या पहनूं? मामा मैचिंग बुंदे हैं, जूता मैचिंग नहीं है, पार्लर से ज़रा बाल बनवाऊं? तो माँ कहेगी, तू पेपर देने जा रही है या शादी में जा रही है? तैयारियाँ बताती हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। बच्चों से लाख छुपा ले, हम शादी में नहीं जा रहे, वो कहेंगे नहीं मामा लिपस्टिक लगाइए, आप शादी में जा रही हैं, तैयार हो रहे हैं। तो लिखिए आप किस जगह जा रहे हैं, किस मकसद से जा रहे हैं, ये आपकी तैयारियां बता रही हैं। आप और मैं इस कमरा इम्तिहान में हैं या पार्टी प्लेक्स में हैं? जो इस दुनिया को कमरा इम्तिहान समझेगा वो फौरन पूछेगा कि बताओ पेपर में क्या आना है, सिलेबस किधर है, किताबें क्या हैं, डेट शीट किधर है। आप देखिए कि जूँ ही कमरा इम्तिहान की बात होती है ना, तीन चीज़ें जहन में आती हैं। आप सबको भी अपना वक्त याद आ जाएगा। सबसे पहले वक्त की कमी का एहसास होता है, वक्त की कदर का एहसास होता है। अमूमन टाइम जितना भी मिल जाए वो थोड़ा ही लगता है, 3 ही घंटे होते हैं, यही हमारा बचपन जवानी बुढ़ापा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो पढ़ाया है उस्ताद ने, यानी इल्म का इम्तिहान होता है। सारा साल पढ़ाते ज्ञान पे टेस्ट ले लिया, कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आप पेपर देखें कि मैंने इसमें तो नहीं देना, मैं तो कोई और दूंगी, मैंने पिछले साल का जो पढ़ा था उसका टेस्ट दूंगी। तो दूसरा मेरा आपका इम्तिहान क्या है इस दुनिया में भी, कि आपने मैंने अल्लाह के सिलेबस में से तैयारी करनी है और वो कुरान और सुन्नत है। वात असिमु बिहब्लिल्लाह जमिया। तीसरी चीज़ है बात माननी पड़ती है। एग्जामिनर जो रूम में बैठे टेस्ट ले रहे होते हैं उनकी बात ना माने तो वो आपका पेपर छीन सकते हैं। जो वक्त दिया उसी में करना होगा, इधर उधर ताका झांकी नहीं करनी। आप अपनी ज़िंदगी को इन तीन चीज़ों में रख लीजिए। अगर आपको संजीदगी के साथ पता है कि मैं इस दुनिया में एक मकसद के साथ आई हूँ, तो फिर आप वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। कमरे इम्तिहान में कोई वक्त नहीं ज़ाया करता, इधर उधर नहीं देखता, हाय मेरा फलां दोस्त नहीं आया, हाय मेरी सहेली क्यों नहीं आई, पता नहीं खैर हो सही, घर जाए माँ के पेपर कैसा वकेगा, दिया ही कोई नहीं, क्यों फिक्रमंद बड़ा रहा, क्या फिक्र था, वो मेरा दोस्त नहीं आया था, मैं उसके गम में घुल गया, माँ कहेगी वो तो आया नहीं, तू तो जाके भी फेल हो गया। दूसरा जाता है कहता है पेपर कैसा हुआ, कहता है बहुत अच्छा हुआ, क्या सवाल आया, कहने लगा पेपर जो है वो तो बड़ा बुरा था, मुझे तो नहीं पसंद आया, मैंने वो फाड़ दिया, फिर अपनी मर्ज़ी के सवाल बनाए, फिर पेपर किया, पास होंगे? ये उन लोगों की मिसाल है जो आज अपनी मर्ज़ी से कुरान को बदलना चाहते हैं। उनको इताअत के मौके पर सवाल जवाब सूझते हैं। तो फिर आप और मैं अपने आप से पूछें, क्या मुझे इस दुनिया में आने का मकसद पता है? यकीन करें पूरा एक जुमला में अगर बोल देती और कुछ ना बोलती तो बात काफ़ी थी, कि क्या मैं इस दुनिया को कमरा इम्तिहान समझ के जी रही हूँ? फिर तो आप बोर होंगे ही नहीं, फिर तो आपकी ज़िंदगी में फ़न, ज़ाया होना टाइम, ये कुछ नहीं है। और अगर आप इसको पार्टी प्लेक्स समझते हैं, फन प्लेक्स समझते हैं, डिज्नी लैंड समझते हैं, फिर आपका हक है कि हर रोज़ पूछें अपने आप से आज क्या मज़ा और कल क्या मज़ा। इस कुरान से दूर रहने की बहुत बड़ी वजह लोगों की, और फिर अंसारुल्लाह पे आ जाती हूँ। सबका दिल करता है अंसारुल्लाह बनने को, फुल टाइम, पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम। पार्ट टाइम जो होते हैं ना वो कुछ और कैटेगरी है, उसको मैं नहीं छेड़ती आज, फुल टाइम की बात करती हूँ। रस्ते में रुकावटें क्या हैं? दुनिया, शादियाँ, मंगनियाँ, दावतें, शॉपिंग, ये वो। तो याद रखिएगा कि फिर आपके मेरे लिए अल्लाह ने चॉइस दी। इन चंद सालों की ज़िंदगी को इम्तिहान के साथ गुजार लो, कल अल्लाह तुम्हें रिजल्ट्स देगा। और आप देख लीजिए कि दुनिया में भी आप देखिए टेस्ट होते हैं ना, हमारे टेस्ट फ़र्क हैं, कभी बीमारी का, खौफ का, भूख का आएगा, मौत इसलिए बना दी कि देखा जाए कि तुम करते क्या हो। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम इस ज़िंदगी का बेहतरीन इस्तेमाल करके जाएं। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला को कितना एतमाद है अपनी तख्लीक पे। एक नहीं, दो नहीं, तीन बार करो। आप और मैं अपने आप से पूछिए, हम जब भी कोई दीन के नाम पर काम करते हैं तो अपने आप को तनकीद के लिए पेश करते हैं? ये भी लिखिए जुमला, हमें कहना नहीं चाहिए लेकिन हमारी अपनी अकल में बात आती है। अल्लाह ताला कह रहे हैं जाओ मेरे आसमान पे तनकीद करो, कह रहे हैं ना। ये कौन कहता है, जिसको वेस्ट में लोग कहते हैं मनी बैक गारंटी, और हर डब्बे पे लिखा होता है, इवन जूस के डब्बों पे बाहर लिखा होता है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द टेस्ट कम, ले आओ इसको, हम खुशी से तुम्हें रिफ़ंड कर देंगे। एतमाद है ना क्वालिटी पे। और हमारी तरह कर रहे हो, अल्लाह माफ़ करे, गलत काम, तो फिर वो कभी भी ना ये काम करें, उनकी तो कंपनियाँ ही फ्लॉप हो जाएँ अगर हम जैसे लोग वहाँ पहुँच जाएँ। चलिए अंसारुल्लाह के लिए एक नुक्ता, क्या मैं अपने आप को तनकीद के लिए पेश करती हूँ? और अगर मेरे किसी काम पे कोई तनकीद करे तो क्या उसको मैं खुशी से बर्दाश्त करती हूँ, या सफाइयाँ पेश करती हूँ, या कहती हूँ अच्छा आज के बाद करूँगी नहीं, मुझे तो आता ही नहीं, करा लें उससे जिसको आता है। नहीं, आप भी कहिए बार बार 10 दफ़ा, आपको तक एक एक फ्लायर जो बनता है ना, अगर मेरे हाथ चढ़ जाए, और मैं डरती हूँ कि ना ही चढ़े, बड़े बड़े फ्लाइट जो लॉन्ग टर्म बनते हैं उसको मैं क्रिटिकली देखती हूँ, आजकल तो हर दिन इतने फ्लाइट्स बनते हैं कि बस दुआ ही दे देती हूँ देखकर। लेकिन मैं किसी फ्लायर को अगर देखने लग जाऊँ 10-10 दफ़ा चेंज होता है, और मैं कहती हूँ कि ये बनाने वाले अगर कुरान ना पढ़े होते तो ये मेरे साथ नहीं चल सकते थे, वल्लाही मैं खुद अपने बारे में कह दूँ, मुझे इतने नक्स दिखते हैं उसमें, और सारे जो दूसरे होंगे वो कहेंगे माशाल्लाह बहुत प्यारा बना, वेरी गुड। मैं कहती हूँ इनकी नज़रें कमज़ोर हैं, इन सब को जाके डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए कि इनकी आईज चेक करवाइए, इतनी तारीफें कर रहे होते हैं, मुझे उसमें 10 चीज़ें दिखती हैं। अब अगर बनाने वाला अल्लाह से नहीं जुड़ा हुआ, उसको तो पता है मेरा वक्त लग रहा है, मुझे तो पे मिल रही है इसकी, मुझे क्या। लेकिन एक वर्कर है, आप उसको पर आवर पे दें अगर, तो उसकी वला से आप सारे दिन में एक फ्लायर बनवाएं या 10 बनवाएं, उसको पैसे मिलने हैं। दाई दीन को, अंसारुल्लाह को एक एक क्लिक के ऊपर, एक एक क्लिक के ऊपर पे मिल रही होती है, पर क्लिक इज योर पे। जाएं कौन आपका दिल ख़त्म करेगा, सारा कुछ भी डिस्कार्ड कर दिया जाए, उस फ्लायर को बनवा के आगे करें ना, आप कहते हैं लो आइंदा नहीं बनाऊंगी, आपने मुझसे मेहनत कराई, आपने मेरा फ्लायर ही नहीं आगे दिया, भाग जाए इधर से। नहीं, ये टोन अंसारुल्लाह की नहीं होती। और ये टोन कब होती है, जब बंदा शौक में काम तो करता है लेकिन अभी तज़किया और तरबिया के मराहल नहीं होते। तो अपने लिए अमल की बात नोट कीजिए, हर चीज़ में तनकीद के लिए तैयार रहें और खुश हों कि अल्लाह ने कोई रखा। आपको तो पहले के दौर की माएँ अपने बच्चों को क्या दुआ देती थी, कहती थी अल्लाह तुझे किसी मुहद्दिस के हाथ लगवा दे, इतनी तनकीद करते थे मुहद्दिसीन, जिरा व तादील एक पूरा बाब है आप कह लीजिए उलूमुल हदीस में। तो बहरहाल फिर आप देखिए इसमें सितारों की बात है, तो कतादा कहते हैं कि सितारों के 3 मकासद हैं, यानी 3 फवायद हैं, आसमान की जीनत, शैतान को मारने के लिए और रास्ते पाने के लिए। जिस शख्स ने इसके सिवा अगर कोई और इससे रास्ता लिया, यानी कोई और काम किया, तो गोया के उसने गलत किया। मतलब यह कि सितारों से किस्मत मालूम नहीं करनी चाहिए, इब्ने जरीर और इब्ने हातिम की रिवायत का खुलासा था। फिर आप देखिए कि जहन्नुम के दारोगाओं के साथ जो बात थी आयत 7 से 11 में, तो इस पे भी थोड़ा सा गौर कीजिए। आज वक्त मौजूद है, अभी ज़िंदगी मौजूद है, सांस चल रही है, नामे अमाल के कलम लिख रहे हैं, अनडू भी कर सकते हैं, रीडू भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। आज कर लीजिए, कल जाकर वहाँ करना पड़ा तो बड़ी मुश्किल होगी। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसमें जो बात हो रही है कि किस तरीके से अल्लाह सुबहान ताला ने अपनी इस कायनात में जो चीज़ें रखी हैं, और वहाँ से फिर लोगों को ये सारी बातें बताकर ये कह दिया कि हम तुम्हें जानते हैं, तो अल्लाह से ज़्यादा हमें कौन जानेगा। ज़रूरत है इस बात की कि हम अल्लाह ताला के इस कुर्ब को महसूस कर सकें। सीखा क्या है, चलिए अपने गुनाहों का इकरार करते हुए तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, 30 आयात की इस सूरत को 30 दिनों में हिफ्ज करना है, नियत करते हैं, सोने से पहले सूरत मुल्क की तिलावत को मामूल बनाना है, दुनिया में रहते हुए ज़िंदगी को मुफीद बनाना है, बिन देखे अपने रब से डरना है, दोज़ख की खौलनाकी से बचने की दुआ करनी है। अल्लाह अकबर। आगे देखिए आयत 15 से 30, टॉपिक लिखिए क्या तुम अल्लाह से बेखौफ हो गए हो। 3 दफ़ा आपको मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये मिलेगा, अफा अमिन तुम या अम अमिन तुम, तो अल्लाह हमें बेखौफ होने से बचा ले और अपना डर दे दे। हुवल्लज़ी जअला लकुम अल-अर्ज़ ज़लूला, वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को पस्तो मती कर दिया ताकि तुम इसकी राहों में चलते फिरते रहो और रोज़ियाँ खाओ पियो, इसी की तरफ तुम्हें जी कर उठ खड़े होना है। चलिए अंसारुल्लाह की तो आज बड़ी सख्ती आ गई, आज का तो सारा पारा ही स्पेशल है। लिखिए ज़मीन की तरह अपने आप को मती कर दें, बिछा दें। देखिए ज़मीन के ऊपर कितना बोझ है ना, मनों टनों अरबों खरबों। कभी ज़मीन ने शिकवा किया, मेरे ऊपर वर्क लोड बहुत है, थोड़े से पहाड़ अल्लाह जी उठा लीजिए। अंसारुल्लाह को अनथक काम करना है, और वर्क लोड कभी कुछ नहीं होता, याद रखिए। इफ़ यू लव योर वर्क यू विल नेवर टायर्ड। अगर आपका पैशन और आपका प्रोफेशन सेम हो, कभी नहीं थकते। आप कभी मर्दों को देखा करें, सारा दिन काम करके आएंगे ना, तो रात को भी लेट ही आएंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। क्यों? कि जो काम किया उसमें मज़ा आया, पैसे आ रहे हैं, ग्राहक आते गए, कमाते रहे। और कभी उसको भी देखें जो जॉब पे सिर्फ घंटे पूरे करने जाता है, ऐसे आता है जैसे कोई पहाड़ ढा के आया। अपने काम से प्यार कीजिए, और मेरा ईमान है, अपने ऊपर लेकर भी कहूँगी और साथियों को भी देखती हूँ, इलास्टिक की तरह आप अपने वर्क को जितना स्ट्रेच कर लें स्ट्रेच होगा, और आप इसको जितना भी कंप्रेस कर लें इतना कम हो जाएगा। हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में बहुत वसत होती है, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप गोल बनाएं 10 कामों के, आप 8 भी कर लेंगे बड़े आराम से, और आप गोल बनाइए 2 काम, तो आप दूसरा भी बड़ा ही मुश्किल करेंगे, बल्कि औखे ही होके गएंगे, हाय आज सुबह भी गए तो शाम भी गए। हम रात को डिस्कस कर रहे थे, इन्हीं दिनों में ये रोज़ ही प्रोग्राम चल रहे हैं। पिछले हफ्ते में एक दिन में 6 प्रोग्राम थे, किसी भी नौयत के थे, सफ़र भी था, हो गए, थके हुए थे हम उस दिन, दौर हम खुश चहक चहक के हम रात को बैठकर बातें करते हैं, आज ये हुआ वो हुआ, जितने बड़े बड़े टारगेट हैं उतना मज़ा ज़्यादा, नींद ही उड़ जाती है मेरी तो खुशी से। देखिए ना, नोट गिनने वाले को नींद आती है, तो नेकियां गिनने वाले को नींद कहाँ आएगी। और फिर जब साथियों की तरफ से ये बात मिले कि हमें इससे ये फ़ायदा उससे ये मिला, तो आपको तो मुस्तकिल एनर्जी मिलती है। जैसे ये फ़ोन चार्जर पे लगा रहता है ना, तो ये हमेशा 100 पे ही रहेगा। आप सारा वक्त यूज़ करें, आपका इंशाल्लाह 98-99 पे रहेगा। चार्जर उतार दीजिए, देखिए थोड़ी देर बाद साइन आ जाएंगे, अब आपकी लो बैटरी हो रही है, चार्ज करें। आप अपने आप को ज़ेरे बार नहीं कहेंगे। और दूसरे हमारा असल में दिमाग ख़राब करते हैं, फ़लाँ से बड़ा काम लेते हैं, फ़लाँ पे बड़ा बोझ है। भाई अंसारुल्लाह को ये बातें नहीं सजती, हसद ना किया करें लोगों की नेकियों को देखकर। बेचारे को खुद एहसास भी नहीं होता, दूसरे कह कह कर एहसास दिला देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह के साथ ताल्लुक़ होता है, तो मैंने तो ऐसा कोई बंदा नहीं देखा कि उसको काम मिले और वो खुश ना हो, बल्कि बेकार लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर आप देखिए कि आजजी भी होनी चाहिए, कोई भी काम करें तो उसके अंदर आजजी का एहसास हो। फिर फरमाया, और अल्लाह की रोज़ियाँ खाओ पियो, इसी की तरफ तुम्हें जी कर उठ खड़े होना है। कल जब इन सारे वर्कलोड्स के बदले मिलेंगे, कोई भी तो नामे अमाल ऐसा नहीं है ना जिसके अंदर आपका हिस्सा नहीं है, कोई भी तो प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें आपकी कोई क्लिक नहीं लगी, तो कोई रहेगी पीछे कोई कसर? उस दिन लोग रश करेंगे, काश हम भी फुल टाइम हो जाते पार्ट टाइम की बजाय। फिर अल्लाह ताला खौफ दिलाता है, क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि आसमान वाला तुम्हें ज़मीन में न धसा दें, और अचानक ज़मीन लरसने लगे, क्या तुम इस बात से निडर हो गए कि आसमानों वाला तुम पर पत्थर बरसाए? फिर तुम्हें मालूम ही हो जाएगा कि मेरा डराना कैसा था। आज दुनिया में बहुत थोड़ा है, आखरत में बहुत बड़े डरावे हैं, और इनसे पहले लोगों ने भी झुटलाया था, तो देखो इन पर मेरा अजाब कैसा हुआ। क्या ये अपने पर खोले हुए और कभी कभी समेटे हुए उड़ने वाले परिंदों को नहीं देखते? इन्हें अल्लाह ही हवा और फिज़ा में थामे हुए है, बेशक हर चीज़ इसकी निगाह में है, सिवाय अल्लाह के तुम्हारा वो कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद कर सके? काफिर तो सरासर धोखे में है। अगर अल्लाह ताला अपनी रोज़ी रोक ले, तो बताओ कौन है जो फिर तुम्हें रोज़ी देगा? जवाब दीजिए, कोई भी नहीं देगा, बल्कि काफिर तो सरकशी और बिदकने पर अड़ गए हैं। अच्छा वो शख्स ज़्यादा हिदायत याफ्ता है जो अपने सर के बल ऊंदा होकर चले। लिख लीजिए, ख्वाहिश परस्त, अखलत अलर्थ, बहुत नीचे भी देखे ना तो कीचड़ ही दिखता है। इशारा है छोटी सोच रखने वाले लोग, लोग कैलेपर के लोग, जो छोटे छोटे कामों के बाद ही थक टूट जाते हैं। अल्लाह कहते हैं कि कोई जो नीचे देखे, और या जो सीधा पैरों के बल राह रास्त पर हो। ये कौन है ऊपर देखने वाला? हाई अचीवर्स, जिनके बहुत बड़े बड़े प्लान्स होते हैं। याद रखिए, अंसारुल्लाह बनना है किसी भी रास्ते में, तो एक दुआ याद रखिए, काम करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, नेकी कर दरिया में डाल, पीछे पलट पलट कर अपनी नेकियों को प्लस माइनस ना करें। वो गिन रहा है ना, जिनकी ज़िंदगी में एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता है, फिर दूसरे के बाद तीसरा आता है ना, वो नहीं थकते कभी। पूछें भी सुनाए थके तो नहीं क्या, वो कहते हैं पूछा ही नहीं अपने आप से, बस आगे चल पड़े। तो कामों में से काम याद रखिए, सूरज की तरह बने, इधर से डूबे उधर निकले। आप सूरज से फ़ायदा लेना छोड़ते, अब कहते जाओ भाई अब सोना है हमने, थक गए हैं। वो कहते हैं तुम नहीं लेते मुझे, मैं जा रहा हूँ UAE की तरफ, मैं जा रहा हूँ लंदन वालों के पास। और जब वहाँ से आप आगे जाते हैं, करते हैं, उसको भेजते हैं, तो वो अमेरिका तक पहुँचता है, वो अमेरिका तक पहुँचता है, आप सो सो के उठ जाते हैं, वापस आपके पास आ जाता है, कभी नहीं थकता। ये कायनात आपको मुझे सिखा रही है, अनथक काम कीजिए, मेहनत कीजिए। फिर भी हम बहुत वक्त ज़ाया करते हैं, मत सोचिए कि हम में से कोई 24 घंटे काम करता है, जितना वक्त मुझे लगता है मैं ज़ाया करती हूँ इतना तो कोई भी नहीं करता होगा। क्योंकि मिनटों और लम्हों पे नज़र रखेंगे तो हमारे पास बहुत वक्त होता है, लेकिन सिर्फ लाशौरेपन की वजह से वो ज़ाया हो जाता है। इसीलिए फरमाया, कह दीजिए कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान आंखें और दिल बनाए, तुम बहुत ही कम शुक्रगुजारी करते हो। कह दीजिए कि वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया और इसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। वापसी का सफ़र, इसको याद कर लें, सब काम आसान हो जाएंगे। काफिर पूछते हैं कि वो वादा कब जाहिर होगा, अगर तुम सच्चे हो तो बतलाओ। आप कह दीजिए इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, मैं तो सिर्फ खुले तौर पर आगाह कर देने वाला हूँ। जब ये लोग इस वादे को करीब तर पा लेंगे, इस वक्त इन काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कह दिया जाएगा यही है जिसे तुम तलब करते थे। आप कह दीजिए अच्छा अगर मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह हलाक कर दे या हम पर रहम करे, बहर सूरत ये तो बताओ कि काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। आप कह दीजिए कि वही रहमान है, हम तो इस पर ईमान ला चुके और इसी पर हमारा भरोसा है, तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि सरी गुमराही में कौन है। आप कह दीजिए कि अच्छा ये तो बताओ कि अगर तुम्हारे पीने का पानी ज़मीन में उतर जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए निथरा हुआ पानी लाए। बोलिए अल्लाह हो, अल्लाह ही लाएगा। यहाँ रिस्क की बातें हुई तो हदीस सुन लीजिए, फरमाया अगर तुम अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा करो तो वो तुम्हें इस तरह रिस्क दे जिस तरह परिंदों को दे रहा है कि वो अपने घोंसलों से खाली पेट निकलते हैं और आसूदा हाल वापस आ जाते हैं। तिरमिज़ी की रिवायत है 2344। तो क्या सीखा, अल्लाह से निडर नहीं होना इंशाल्लाह, पाकीज़ा हलाल रिज़्क़ खाना है, अल्लाह के गज़ब से बचने की दुआ करनी है, सरकश और नाफरमान बंदों में नहीं होना, अपने जिस्मानी अज़ा को अल्लाह के कामों के लिए खपा देना, गुमराही को छोड़कर सिराते मुस्तकीम की दुआ करनी है। अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे।